नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के संक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए अपनी विशेष राय और आंकड़ों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका।
नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार।
सभी लिसनर्स को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आज सुबह से आपने किसी न किसी इवेंट पे जरूर पार्टिसिपेट किया होगा और योग को अपनाने का एक प्रण लिया होगा। क्यों रणवीर जी, आपको नहीं लगता आज देश भर में या यूं कहें कि पूरे विश्व में योग पूरे उत्साह के साथ मनाया गया?
सारे देश में और सारे विश्व में
जी,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2014 में जब सत्ता संभाली थी, तब से योगा का जिस तरह से प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ है। हालांकि प्राचीन काल से हमारे तमाम ऋषि मुनि ये सब बताते थे, उतना लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जिस तरह से पब्लिक इस ओर आकर्षित हो रही है योगा की तरफ, ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी बात है फिटनेस के लिए।
अपने विशेषज्ञ से हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर कि क्या हो रहा है देश विदेश में, खेल जगत की दुनिया में। भारत ने इंग्लैंड के साथ हेडिंग्ले में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पहली पारी में 471 रन बनाए। भारतीय पुरुष पहलवानों ने वियतनाम के वोंग ताओ में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती में 6 पदक जीते। फिडे शतरंज रैंकिंग में भारत के प्रज्ञा नानंदा पहले स्थान पर पहुंचे। विश्व चैंपियन डी गुकेश दूसरे स्थान पर, और नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। रणवीर सिंह जी, जैसे हम बात कर रहे थे, इस समय पूरा भारत, पूरा विश्व जो है योगमय हो रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी ने किसी ना किसी स्पर्धा में आज जरूर पार्टिसिपेट किया होगा, और जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि प्रधानमंत्री के कारण ये जो योग है वो देश से निकलकर पूरे विश्व में पहुंच चुका है,
और तमाम पार्कों में, आप कहीं भी कॉलोनियों में देखिए, पार्कों में देखिए, लोग योग पे ध्यान दे रहे हैं, योगा कर रहे हैं
जी।
ये एक बड़ी चीज है फिटनेस के लिए,
फिटनेस के लिए, और यूं कहें कि अगर देश स्वस्थ रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं।
योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
वहीं आज विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति, अस्थिरता की स्थिति है, और ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग समस्त मानवता के लिए स्थिरता, संतुलन और समग्रता का प्रभाव लाता है।
योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा, लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी।
रणवीर जी, हम बात कर रहे थे, देश विदेश की बात कर रहे थे कि लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया, और जानते हैं कि विशाखापत्तनम में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें 2,72,000 लोगों ने साझेदारी की है।
बहुत बड़ी बात है
जी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जब खिलाड़ी हैं उनको भी अपने इन दैनिकचर्या के अंदर अपने आप को फिट रखने के लिए योग को कहीं ना कहीं अपना लेना चाहिए?
योगा कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, जब मैंने शूटिंग कवर करना शुरू किया
जी,
तो देश की जो वर्ल्ड की नंबर वन शूटर बनी अंजलि भागवत, उन्होंने कहा था हम लोग योगा सुबह जरूर करते हैं। मैंने कहा इससे फायदा क्या होता? बोला योगा और प्राणायाम से मन शांत रहता है और हमें एकाग्रचित होने का अवसर मिलता है
जी। उधर अबुधाबी में भारतीय दूतावास में आज अबुधाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में व्यापक स्तर पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। देश से भी हर जगह से, पूरे राज्यों से, हर राज्य से योग मनाने की खबरें हमारे पास लगातार आ रही हैं। दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साइक्लिन वेलोड्रोम्स में 1500 से अधिक योग साधकों के साथ योगासन किया, उधर आज दिल्ली सहित पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है, ये खबर हम लगातार दे रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने कैबिनेट मंत्रियों, दिल्ली के सांसदों, विधायकों और दिल्ली वासियों के साथ शहर के सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में योगाभ्यास किया। और जानकारी के लिए सुनते हैं अपने संवाददाता सकलेन अख्तर को।
एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के थीम पर आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने शहर के अलग अलग स्थानों पर आज योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। शहर भर से लगभग 20,000 लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लेकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योग दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए उनसे अपील कर कहा कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
हम सब मिलकर के इस योग दिवस को एक नया माइलस्टोन समझें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ देश ही समृद्ध देश हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आपका स्वास्थ्य, देश के 140 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य और विशेष रूप से दिल्ली का स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
वहीं कार्यक्रम के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के भव्य योग उत्सव में लोगों की सहभागिता और उत्साह ने यह सिद्ध किया कि जब सरकार और समाज एक साथ चलते हैं तो संस्कृति जन जन का संकल्प बन जाती है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सेवाभावी संगठनों और योग साधकों को इस आयोजन की सफलता के लिए धन्यवाद भी दिया।
योग की दुनिया से निकलकर अब अपने खेल प्रेमियों को हम सीधा लिए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जा रहा है। भारत मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि भारत ने अपनी पहली पारी में 471 रन बना लिए थे और उसकी पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है। और इस समय इंग्लैंड की जो पारी चल रही है उसमें एक विकेट उसका गिर चुका है, 71 रन जो है बोर्ड पर लग चुके हैं। इस पर और चर्चा करेंगे, पहले देवेंद्र त्रिपाठी से आज दिन भर का हम हाल सुन लेते हैं कि क्या कुछ रहा क्रिकेट के मैदान पर।
भारत तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 4 विकेट पर 471 रन बनाकर आउट हो गया है। भारतीय टीम ने आज आखिरी 7 विकेट सिर्फ 41 रन पर गंवा दिए। इंग्लैंड के लीड्स में हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में आज भारत ने अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान शुभमन गिल ने 147 रन जबकि ऋषभ पंत ने 134 और यशस्वी जायसवाल ने 101 रन का योगदान दिया। केएल राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए। लंच से पहले गिल और पंत के आउट होने के बाद भारतीय लोअर मिडिल ऑर्डर बिखरता हुआ नजर आया। टीम में वापसी कर रहे करुण नायर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, वहीं रविंद्र जडेजा सिर्फ 11 और शार्दुल ठाकुर 1 रन ही बना सके। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट हासिल किए जबकि ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर को 1-1 विकेट मिला। स्पोर्ट्स कैन देवेंद्र त्रिपाठी।
रणवीर, लीड्स में भारत इस समय मजबूत स्थिति में, 400 रन इस समय भारत आगे चल रहा है। यूं कहेंगे इंग्लैंड 400 रन पीछे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत ने कल बल्लेबाजी की और आज जो है लंच के बाद 7 विकेट भारत के उखड़ गए मात्र 42 रन पर।
देखो, मैं इसमें नवीन ये कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड का दौरा
जी
हमेशा टफ माना जाता है
जी,
और हिंदुस्तान ने कल टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने जिस तरह से इंग्लैंड के कप्तान ने बैटिंग करने के लिए कहा हिंदुस्तान को, तो बहुत शानदार डिसीजन था हिंदुस्तान के हिसाब से जिस तरह की बैटिंग हुई और 91 रन पे जाकर के केएल राहुल का पहला विकेट गिरा। 100 रन की पार्टनरशिप तकरीबन हो गई थी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह से सेंचुरीज बनाई और आज जो ऋषभ पंत ने जो गेम खेला है
जी
वो तो ऐसा ताबड़तोड़ बैटिंग की है कि मतलब लग रहा है इंग्लैंड को बिल्कुल निशाने पे ले रखा है। क्योंकि भारतीय विकेटकीपर्स की बात करें तो एक नया रिकॉर्ड बना है, 7वीं सेंचुरी विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की हो गई। एमएस धोनी की 6 सेंचुरीज थी, रिजवान साहब की 3 थी
जी,
और इन 7 में से 3 सेंचुरीज में ऋषभ पंत ने अपने 100 रन 94 से सीधा 6 मार के पूरे किए और ये तीनों ही मर्तबा इंग्लैंड के खिलाफ किया है।
रणवीर, भारत की एक यंग टीम या कहें कि यंग ब्रिगेड इस समय इंग्लैंड की धरती पर खेल रही है।
बिल्कुल, जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट हुआ है हाल ही में तो लग नहीं रहा था, और जिस तरह से मीडिया हाइप था सुबह से शाम तक खबरें चल रही कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा क्या होगा, लेकिन सीरीज की शुरुआत टूर की शुरुआत इस तरह से होगी किसी को अंदाजा नहीं था।
लेकिन रणवीर, यहाँ पे दो प्लेयरों के बारे में विशेष जिक्र करना चाहूंगा। एक हमारे साई सुदर्शन है, वो शायद उनपे कुछ इंग्लैंड का प्रेशर रहा, जबकि यहाँ बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने भारतीय पिचों पर।
देखिए, अब सारे खिलाड़ी तो सेंचुरी बनाएंगे नहीं, है ना
जी।
आपके तीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, और बाकी प्लेयर जो है वो धीरे धीरे उस कंडीशन में सीखेंगे बॉल को छोड़ना है और किस बॉल को खेलना है।
रणवीर, थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। अगर बैटिंग की बात करें, शुरू के आपके चार प्लेयर या पांच प्लेयर बेहतरीन खेल खेलते हैं, लेकिन आखिर के आपके छह सात प्लेयर जो हैं बहुत ही कम रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। ऐसे में अगर इंग्लैंड की टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है तो क्या भारत के लिए दूसरी इनिंग के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है?
देखो, पहली बात तो यह कि इंडिया का पहला टारगेट होना चाहिए था 270 रन इंग्लैंड के लिए, जिससे फॉलो ऑन का चांस रहे
जी।
लेकिन वो होता दिख नहीं रहा, क्योंकि पहला विकेट तो बहुत जल्दी
गिर गया था।
लेकिन उसके बाद से जिस तरह से 70-71 रन बन गए हैं और अभी कोई विकेट गिरा नहीं, ओली पॉप और दूसरे उनके साथ डुकेट बहुत संभल के, बहुत फास्ट नहीं खेल रहे हैं, संभल के बैटिंग कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम निकाल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा।
क्रिकेट में, इस क्रिकेट में जो चल रहा है इंग्लैंड में, क्या पिच जो है वो बेहतर होती चली जा रही है खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए? क्योंकि भारत ने भी एक विशाल स्कोर खड़ा किया है और इंग्लैंड भी अब धीरे धीरे उस स्कोर की तरफ अग्रसर होता है।
भारत ने जब विशाल स्कोर खड़ा किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के रिटायरमेंट के बाद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। जिस तरह से हमारे टॉप के बैट्समैन ने अच्छा स्कोर किया और फ्रीली शॉट लगाते रहे, लेकिन बाद के जिस तरह से लपेट दिए बैट्समैन, वो अब देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं।
रणवीर, बहुत संक्षेप में, बुमराह क्या कमाल कर सकते हैं?
अब बुमराह ने पहला विकेट तो निकाला है, लेकिन उसके बाद अभी कुछ हो नहीं रहा है
जी।
तो अभी अगला ब्रेक थ्रू पहले मिले, उसके बाद देखेंगे बुमराह उस लाइन पे कितना आगे चल पाते हैं।
क्रिकेट के मैदान से अब आपको लिए चलते हैं हम कुश्ती के रिंग की ओर। भारतीय पुरुष पहलवानों ने वियतनाम के वोंग ताओ में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और फ्री स्टाइल कुश्ती के 6 पदक जीत लिए। निखिल, सुजीत, जयदीप, चंद्रमोहन, सचिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए और भारत 11 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कई पदक हासिल कर चुका है। और अब बात शतरंज की, बिसात की। फिडे लाइव शतरंज की जारी रैंकिंग में भारत के 3 शीर्ष खिलाड़ी 10 पे पहुंच गए हैं। प्रज्ञानानंदा विश्व चैंपियन, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश से 1 पायदान ऊपर हैं। सुनते हैं सरफिरोजी को।
भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा फिडे लाइव शतरंज रैंकिंग में शीर्ष 5 पर पहुंच गए हैं। प्रज्ञानानंदा विश्व चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश से 1 पायदान ऊपर हैं। गुकेश 6 स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंदा उज्बेकिस्तान शतरंज महासंघ की ओर से आयोजित प्रतिष्ठित उजचेस कप मास्टर्स में हिस्सा ले रहे हैं। पहले राउंड में ड्रॉ के बाद प्रज्ञानानंदा ने शानदार वापसी की और उज्बेकिस्तान के शमसुद्दीन वोकिदोव को सफेद मोहरों से हराया। वर्तमान में वे 1.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। फिडे लाइव शतरंज रैंकिंग में शीर्ष 10 में 3 भारतीय रह गए हैं। कल जारी रैंकिंग में अर्जुन 3रे से 4थे स्थान पर पहुंच गए, वहीं अरविंद चिदंबरम शीर्ष 10 से बाहर होकर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें 5 स्थान का नुकसान हुआ है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
और अब बात भारतीय स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। स्टेट सेबेस्टियन चालनी में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ ये खिताब जीत लिया है। नीरज ने एक बार फिर कमाल किया है।
कमाल किया, मजे की बात ये उनका पहला ही थ्रो था, इसके बाद के सारे थ्रो कम होते गए
जी।
और दूसरे, इस कॉम्पिटिशन में 90+ मीटर थ्रो करने वाले एथलीट्स मौजूद थे थ्रोअर्स, लेकिन कल 82 मीटर भी क्रॉस करना मुश्किल हो गया बाद के एथलीट्स के लिए।
और उसी में नीरज ने बाजी मार ली।
बिल्कुल, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा।
अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है रणवीर जी, हम आपसे अब तमाम खबरों पर चर्चा करें और आपके आंकड़ों को अपने लिसनर्स के साथ साझा करें। बहरहाल, आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, कल 8:30 पर फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स स्कैन के एक नए संस्करण के साथ। नमस्कार।